ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸೇ ಬೋಲಿಯೇ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆವಾಜ್ ಕಮ್ ಕ್ಯೂ ಆ ರೀ ಹೈ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. तो आज के इस इतवार के दिन 9 अक्टूबर 2016 आपके क्षेत्र में आपने मुझे बुलाया, मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबका धन्यवाद है. और इस क्षेत्र में आपने परम भगवान राधा कृष्ण को आमंत्रित किया है, ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है. मनुष्य जीवन भगवान के बिना अधूरा है. अगर मनुष्य जीवन में भगवान नहीं है तो मनुष्य जीवन जानवर का जीवन है. थोड़ा सुनने को कठोर लगता है लेकिन सत्य है. मनुष्य माइनस भगवान इज इक्वल टू जानवर, क्योंकि जानवर के जीवन में भगवान नहीं होता. जब मनुष्य जीव मनुष्य के जीवन में भगवान आता है, मतलब जानवर, जब मनुष्य भी जानवर ही है, प्राणी है, जब इस मनुष्य जीवन में भगवान आते हैं तो मनुष्य को मनुष्य का स्तर प्राप्त होता है. इसलिए आज का बहुत पवित्र दिन है. जिस दिन हमारे जीवन में भगवान आ जाते हैं वही पवित्र दिन है. इसलिए भक्तों के जीवन में हर दिन महोत्सव होता है, क्योंकि हर दिन वो सुबह उठते हैं और भगवान का नाम जपते हैं. उनके हृदय में पुनः भगवान का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, और नित्य करते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं, भगवान की पूजा करते हैं. इसी को महोत्सव कहा गया है. और जिस जगह पर महोत्सव नहीं होता है उस जगह कहा गया है रहना नहीं चाहिए. महोत्सव का मतलब क्या है? महोत्सव का मतलब वैष्णवों को बुलाना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम के कीर्तन करते हुए नृत्य जरूर करना. जहाँ नित्य नहीं होता है, नृत्य डांस नहीं होता है, उसको उत्सव नहीं कहते हैं. आपके यहाँ शादी होती है ना, मारवाड़ में, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में नाचते हैं क्या सब लोग शादी में? बिना नाच के शादी नहीं होती है, कोई उत्सव नहीं होता है. उसी तरह से भगवान के उत्सव में भी नृत्य होना बहुत ज़रूरी है. फिर वैष्णवों को बुला के भगवान को सुंदर सुंदर व्यंजन भोग अर्पण करके प्रसाद जो होता है वो वैष्णवों को खिलाना है, इससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है. और यही उत्सव जो है ये हमारे भारतवर्ष की एक विशेषता है. यहाँ पे एक के बाद एक उत्सव है ना. अभी अभी गणेश उत्सव समाप्त हुआ, तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा, उसके बाद में दीपावली, ऐसे एक के बाद एक उत्सव चलते रहते. इसलिए यहाँ पर मानसिक रोग कम हैं विदेशी लोगों से, क्योंकि विदेशों में उत्सव नहीं होते, यहाँ पर उत्सव होते हैं. वो भी गुजरात में अलग, महाराष्ट्र में अलग, साउथ इंडिया में अलग, नॉर्थ इंडिया में अलग, आसाम में अलग, मणिपुर में अलग, बंगाल में अलग, कुछ समानता है लेकिन विविधता बहुत है. इन सारी विविधताओं का एक एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म वो है महोत्सव. सब जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के उत्सव. और उससे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतने विविधतापूर्वक भगवान की संतुष्टि के लिए उत्सव मनाए जाते. वैसे आज यहाँ पर उत्सव है. क्या उत्सव है? कि हमारे जीवन में अभी ठाकुर जी शरीर रूप में प्रकट हो रहे हैं, विग्रह रूप में प्रकट हो रहे हैं, मूर्ति रूप में प्रकट हो रहे हैं. हम सबको सेवा देंगे, हमारे सारे इंद्रियों को अपनी इंद्रियों की सेवा में लगाएंगे. ऋषिकेश सेवन उच्चते. हमारे ऋषिक यानी हमारी इंद्रियाँ, ऋषिकेश यानी हमारे इंद्रियों के स्वामी. हमारे इंद्रियों को हमारे इंद्रियों के स्वामी के सेवा में लगाना है, ये मौका भगवान देते हैं, इसलिए विग्रह रूप में आते हैं। जो लोग उनको कण कण में नहीं देख सकते उनके लिए विग्रह रूप में आते हैं। और हम सबको, चाहे हम पतित हो, चाहे हम उन्नत हो, आगे बढ़े हुए हो या पतित अवस्था में हो, सब लोगों को कुछ ना कुछ सेवा प्राप्त होगी। हाँ, भगवान के सामने कुछ फूल गिरे हैं तो उसको साफ करने की सेवा मिलेगी, किसी को अगर कुछ नहीं आता है, या किसी को भगवान के लिए व्यंजन बनाने की सेवा मिलेगी, माला बनाने की सेवा मिलेगी, वस्त्र पहनाने की सेवा मिलेगी, आरती करने की सेवा मिलेगी। और आज से लेकर आगे जीवन भर जिसको जिसको इच्छा है वो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में संलग्न हो सकता है। और प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, शास्त्र में सब जगह लिखा है, बांग्ला में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, मराठी में लिखा है, कन्नड़ा में लिखा है, सब जगह लिखा है कि ठाकुर जी का विग्रह ठाकुर जी से भिन्न नहीं है, साक्षात ठाकुर जी है वो। इसकी श्रद्धा है उनके लिए ठाकुर जी विग्रह के रूप में रोज नए दर्शन देंगे, कल जो देखा वो आज नहीं देखेगा, अलग देखेगा। आज ठाकुर जी अपनी प्रसन्नता नाराजगी सब व्यक्त करेंगे अपने दर्शन के माध्यम से, और जिसका भाव होगा उसके लिए वो रोज नव नवायमान विविधतापूर्ण दर्शन होगा। ये अनुभव आपके देने के लिए ठाकुर जी यहां पधारे। इसलिए केवल उनको संगमरमर की मूर्ति मत समझना। शास्त्र में लिखा है अगर कोई व्यक्ति मूर्ति को लकड़ी या संगमरमर या पत्थर समझता है तो उसकी बुद्धि नरक की बुद्धि है, नारकीय बुद्धि कहा गया उसे। वो यहां पर होते हुए नरक में निवास कर रहा है। जो किसी गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है वो व्यक्ति भी नरक में निवास कर रहा है। उसी तरह से आपके यहां पर साक्षात आपको प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। और इतने सुंदर विग्रह हैं, जब मैं उनका अभिषेक कर रहा था, इतने सुंदर विग्रह, इतने सुंदर उनके एक एक अंग हैं, श्री अंग उनके दिव्य अंग हैं। ठाकुर जी के हर एक अंग दिव्य होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। हमारे कैसे होते हैं? समय के बाद में बूढ़े हो जाते हैं। वही आंखें आज दिखाई दिख रही, उनसे आगे दिखाई नहीं पड़ेगा, मोतीबिंद आ जाएगा उसके अंदर। अभी सुंदर काले बाल है तो सफ़ेद हो जाएंगे। हाँ, शरीर में चुस्ती है, उत्साह है तो फिर वो डंडा लेके चलेगा आगे। अभी अमीरी है तो कभी गरीब हो जाएगा, ये हमारे अस्तित्व का लक्षण है। लेकिन ठाकुर जी का जो हर एक अंग है वो दिव्य है, सच्चिदानंद है, सर्व आनंद से भरा हुआ है, विश्व को आनंद से भरने की शक्ति रखता है हर एक इंद्रिय। तो उनकी आंखों को कमल नयन कहा गया है, कमल दल की तरह उनकी नेत्र हैं जो विश्व पर कृपा दृष्टि रखते हैं और सब जीवों का कल्याण करते हैं। तो ये विग्रह जो था राधा कृष्ण भगवान, इन्होंने मूल लीला वृंदावन में की है ना। आप सब जानते हैं कि ठाकुर जी की लीला उन्होंने अपने सर्वोच्च धाम में की। ऐसे कहते हैं जब भगवान को भोजन करने की इच्छा होती है तो वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ पर छप्पन भोग लेते हैं। जब उनको सोने की इच्छा होती है तो वो साउथ इंडिया में जाके सोते हैं, श्रीरंगनाथ के रूप में। वो तो जाएंगे तो सब जगह विग्रह सोए हुए हैं, रंगनाथ जी, आदिकेशव जी, हाँ सब जगह विश्राम कर रहे हैं। जब उनको राज दरबार, राजनीति, राजपाट चलाने की इच्छा होती है तो वो द्वारका जाते हैं, और जब उनको तपस्या करने की इच्छा होती है तो वो ऋषि बनकर हिमालय में नर नारायण ऋषि बनकर तपस्या करते हैं। लेकिन इन सारी अवस्थाओं में वो भगवान होते हैं, वो भगवान होना छोड़ नहीं देते। लेकिन जब उनको खेलने की इच्छा होती है तब वो वृंदावन जाते हैं और वहाँ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? थोड़ा आवाज़ करो, कम कर, नहीं कम। कैसे खेलते हैं? अपनी भगवान की स्थिति को भूलकर एक सामान्य व्यक्ति बनकर खेलते हैं, ये उनकी विशेषता है। भगवान ने कई बार प्रयास किया अपना ऐश्वर्य दिखाने का, फिर भी वृंदावन में अपना ऐश्वर्य दिखा नहीं पाए हो, क्योंकि वो भी जैसे कि एक बड़ा आदमी होता है ना, वो भी कभी कभी अपना बड़प्पन सब कुछ भूल के एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहता है, एक बालक बनकर, एक मित्र बनकर, हाँ एक पति बनकर, पत्नी बनकर, पुत्र बनकर, एक समाज का साधारण अंग बनकर रहना चाहता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं मैया को मिलने के लिए, तो मैया उनके सर पे हाथ फिराती है, है ना, और उनको 100 रुपये निकाल के देती है गिफ्ट के रूप में, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको कि देश के लिए प्रधानमंत्री हूँ लेकिन मैया के लिए बेटा हूँ। कितना भी उम्र हो गई बेटे के भी, वो बेटा बहुत ख्याल करेगी अपना, अच्छा लगता है कि मैं भी एक सामान्य व्यक्ति बनकर सामान्य भावनाओं को अनुभव कर सकता हूँ। तो भगवान को भी ऐसे सामान्य व्यक्ति बनकर, वो जो सामान्य व्यक्तियों की बहुत सामान्य लगती है लेकिन वो दिव्य भावना जो होती है ना, उसका अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य का भोग छोड़कर वो ब्रज में जन्म लेते हैं। स्वयं भी कहते हैं कि आपकी छाछ और आपका मक्खन चुराने के लिए मैंने वैकुंठ का सारा ऐश्वर्य छोड़ दिया है, सब कुछ मेरा ही है, छाछ भी मेरा है, दूध भी मेरा है, मक्खन भी मेरा है, घी भी मेरा ही है, लेकिन वो चुरा के खाते हैं, वो चुराने का आनंद लेते हैं, इसलिए ब्रज में आते हैं। इसलिए ब्रज महान है, क्योंकि ब्रज में कोई भी व्यक्ति भगवान को भगवान के रूप में जानता नहीं है, ना मैया जानती है, ना गोपियाँ जानती हैं, ना ग्वाल बाल जानते हैं, ना गाय जानती है, ना बंदर जानते हैं, कोई जानते नहीं है। सब समझते मेरे मित्र है, मेरे सखा है, मेरे प्रियकर है, मेरा पुत्र है। और एक सिंपल गाय चराने वाला लकुटी लेकर सामान्य व्यक्ति भगवान बनते हैं और अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन अवजानंती माम मूढ़ मानुष्यम तन्माश्रितम, हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, वो उनको सामान्य तरह से रहते हुए देखते हुए सामान्य समझते हैं और वहीं पर घूल करके बैठते हैं। सामान्य दिव्य व्यक्ति सामान्य बनकर आने पर सामान्य नहीं बनता, वो दिव्य रहता है लेकिन वो दिखाता नहीं है अपना दिव्यपन, दिव्यता। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, एक सामान्य बालक बनकर ब्रज में आए। और इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वगोषम निमाज्जंतम अख्यापयंतम, सारे गोकुल वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया उन्होंने। इतना आनंद जो वैकुंठ में भी नहीं है, इतना आनंद दिया उन्होंने। अभी हम कहेंगे वैकुंठ में इतना आनंद है, उससे ज्यादा आनंद मिला उनको, उसका प्रूफ है ना, भगवान ने दिया है। एक बार ग्वाल वालों ने उनको बोला कि भगवान, मतलब अपने कन्हैया को बोला कि हमने सुना है कि तुम वैकुंठ के भी नाथ हो, और हमने सुना है वैकुंठ बड़े अच्छी चीज़ है, सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं, हमको एक बार वैकुंठ का दर्शन करा दो। ठाकुर जी कहते हैं कि वैकुंठ में कुछ नहीं है, आपको आनंद नहीं आएगा वहाँ पर। नहीं नहीं हमने सुना है वैकुंठ जो है सब लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं, हमको एक बार दर्शन करा दो, लाला एक बार दर्शन करा दो। तो ठीक है, बोले आँख बंद करो। जैसे आँख बंद करते हैं, अभी बोलते हैं आँख खोलो, उसी कन्हैया की आवाज़ आती है आँख खोलो, तो आँख खोल लेते हैं। जैसे देखते हैं, अरे बाप रे, इतनी बड़ी सभा में इतने दिव्य प्रकाश, इतना ऐश्वर्य, इतना गहने, इतने रत्न माणिक लगे हुए सब जगह पर, चमक चमक सब जगह पर है, सब जितने भी लोग हैं वो सब ऐश्वर्य संपन्न हैं, इतने वस्त्र पहने हुए हैं, अलंकार पहने हुए हैं, सब लोग चमक रहे हैं, सबके शरीर से सुगंध आ रही है, सबके शरीर से प्रकाश आ रहा है, हाँ, ऐसे करोड़ों लोग, अनंत करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, दूर ऊंचाई पर एक चमकते हुए सिंहासन पर कन्हैया बैठे हुए हैं विष्णु बनकर, उनके बाजू में लक्ष्मी जी बैठी हुई, उनकी राधा रानी यहाँ पे, वहाँ पर लक्ष्मी बनकर बैठी हुई, और कहीं भी उनके साथ कोई संपर्क करने का चांस नहीं है, दूर कहीं है। रोज साथ में गले मिलते थे, कंधे पे चढ़ते थे, साथ में जमुना जी में कूदते थे, लेकिन यहाँ इतने दूर है कि पुकारेंगे तो भी सुनाई नहीं पड़ेगा। बहुत देर बैठते देखते हैं उनको, कुछ ही देर में बोर होने लगता है, ले क्या है, ना गैया है, ना गाय चराना है, ना कोई मुरली है, ना कोई मुरली वादन है, ना कोई गले लगना है, ना कोई मजाक, कोई हास प्रयास, सब लोग एकदम ऑफिशियल मूड में है, सब लोग दंडवत कर रहे हैं, प्रार्थना गा रहे हैं, ब्रह्मसूत्र गा रहे हैं, पुरुष सूक्त गा रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो मन ही मन बोलते हैं, ठाकुर जी, कन्हैया जी, बहुत हो गया, वापस चलना है अभी। तो आवाज़ आती है, आँख बंद कर लो, तो आँख बंद कर लेते हैं, फिर आवाज़ आती है, आँख खोलो, फिर आँख खोल लेते हैं, फिर वापस ब्रज के गई गाय के बीच में जमुना जी किनारे। बोले कैसे लगा, बोले बहुत बोर हो गया, बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। मैंने कहा था आपको कि नहीं आएगा आपका आनंद, क्योंकि ब्रज के भक्त जो है वो ऐश्वर्य की भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं, उनको ऐश्वर्य में मज़ा नहीं आता है। यहाँ पर आंखें चकाचौंध होती हो, वहाँ पर मज़ा नहीं आता है उनको, उनको प्रेम चाहिए। और भगवान को भी उस ऐश्वर्य में इतना आनंद नहीं, वहाँ पर भी भक्त है उनके, ऐसे नहीं वहाँ भक्त नहीं है, अलग भाव में है उनके भक्त। वो सब कुछ छोड़ के वो ब्रज में आना चाहते हैं, और जो उनका ही खुद का है वो चुरा चुरा के खाना चाहते हैं। ये ब्रज की महिमा है। और ये ब्रज में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कभी भगवान को, मतलब उनके लिए अपने जीवन में कुछ है ही नहीं, उनका कुछ है ही नहीं, ना वो अपना कुछ मानते हैं। अभी गिरिराज जी का जब पूजन हुआ, आपको लोगों को पता नहीं होगा शायद, पता भी होगा शायद, हमारे घर में जब उत्सव होता है ना तो हम लोग अपना 2-4 किलो सामान बना देते हैं, आप लोग लेके आएंगे कुछ, आप लोग लेके आएंगे, बहुत सारा लगेगा यहाँ पर, लेकिन आपके घर में उससे 99% अधिक सामान आपका होगा, 1-2% सामान आप लेके आएंगे यहाँ पर कुछ बनाएंगे। लेकिन ब्रज के भक्त ऐसे हैं, भगवान ने जब बताया कि पर्वत के समान भोग लगना चाहिए, तो उन्होंने अपने घर में एक एक दाना जितना था वो सारा लगा दिया उसके अंदर, एक भी व्यंजन घर में बचा नहीं उनके, सबके जितना भी धान्य का आगार था ना, वो स्टोर था, सारा खाली कर दिया, यहाँ तक कि विचार नहीं किया कि अगला जो भोजन होगा जो कैसे होगा, इतना समर्पण था उनके अंदर। उनका मन में विचार छुआ भी नहीं कि अगले भोजन कहाँ से करेंगे, सब कुछ अर्पण कर दिया। और भगवान भी कैसे, जब इतना पर्वत, मतलब अन्नकूट, अन्न के कूट, अन्न के पर्वत, आज भी जाएंगे ना तो 1-2 किलोमीटर की जगह है, दान निवर्तन कुंड से लेकर आने और गांव तक, वो 2 किलोमीटर की जगह पर एक छोटी उंगली घुसाने की भी जगह नहीं थी, इतने सारे पर्वत भोजन के लगे हुए थे, हौद बने हुए थे दही दूध और खीर के, और पर्वत बने हुए थे बाकी सारे सूखे व्यंजनों के, और इतने सारे 2 किलोमीटर तक बड़े बड़े लगाए हुए पर्वत हमारे ठाकुर जी ने एक क्षण में खा लिए, एक क्षण में ऐसे दोनों हाथ से खा लिए। कुछ सखियां ऐसी थी वो दूर गांव में थी, वो आई नहीं थी यहाँ पर, वो अपने घर में व्यंजन बनाकर पर्वत बनाकर लगा के रखी थी, वो बोल रही थी कि अगर आना हो यहीं आके खा लो, तो ये खा रहे थे तो एक हाथ ऐसा लंबा कर दिया कुछ 30 किलोमीटर दूर तक, और वो सखी के भी भोजन खा लिया, लेकिन कुछ ही क्षण में सब खाली हो गया। फिर भगवान बोले और दो और दो, फिर और दो बोलने के बाद क्या हुआ, कुछ है तो नहीं, सब कुछ खत्म है, तो तुलसी अर्पण किया उनको, संतुष्ट हो गए, ऐसे संतुष्ट हो गए, सारे व्यंजन दोबारा प्रकट किए उन्होंने जो उन्होंने खा लिए थे, फिर बताया किसको किसको कैसे बांटना है उसको। ऐसे भक्त हैं ब्रज के अंदर, पूरे समर्पित। हाँ, तो मुझे ये जो अभिषेक हो रहा था तो एक चीज़ याद आ रही थी, मैं जरूर बताऊंगा आपको वो बात, कि राधा रानी का अभिषेक हम कर रहे थे इस तरफ से, तो राधा रानी की आंखें इतनी कृपामयी है, इतनी दयामयी है, और शंकर जी का नाटक भी देखा उसके बाद में, तो भी मुझे वही बात याद आ गई, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, ये शंकर जी भगवान ने स्वयं रचना की है उसकी, स्वयं कवि है उसके वो, और वो राधा कृपा कटाक्ष भजन लिखकर शिव जी महाराज ने अपनी पत्नी को भेंट दिया, जिस पत्नी के नवरात्रि का पूजन हम लोग मना रहे हैं। वो पत्नी भी कितनी महान है और पति भी कितने महान हैं, दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ, और पति भी कैसे महान है, वैष्णवानां यथाशंभु, सब वैष्णवों के अंदर श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी महाराज हैं, तो उन्होंने ये कृपा कटाक्ष स्तोत्र लिखा हुआ है। इसमें क्या अर्थ क्या है, हे राधे कब कृपा करोगी, कब आपके कृपा का कटाक्ष मुझ पर गिरेगा, कब मेरा उद्धार होगा, हे राधे कब आपका कृपा कटाक्ष मुझ पर प्राप्त होगा, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो ये शंकर जी महाराज, इन्होंने विष्णु आराधना किया, उनको विष्णु का दर्शन हुआ, तो फिर विष्णु ने उनको राधा मंत्र और राधा व्रत दिया, ब्रह्म विवर्त पुराण में इसकी कथा आती है, त्रैमासिक व्रत किया दोनों ने मिलकर, व्रत रखते यानी उपवास रखकर 3 महीने तक हर हफ्ते में अलग अलग प्रकार के व्यंजन, अलग अलग प्रकार के फूल भगवान को अर्पण करने की त्रैमासिक व्रत किया उन्होंने। आप सबने सुना होगा एक फूल है इसका नाम है सौगंधिका। वो सौगंधिका फूल जो है ना उसको 1000 पंखुड़ियाँ होती है, वो कमल दल कमल का फूल होता है, कमल जैसा होता है कमल, उसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं। ऐसे फूलों का एक पूरा सरोवर बनाया देवी ने गणेश जी के गणों के साथ, शिव जी के गणों के साथ सहायता करते हुए उन्होंने उसको मेंटेन किया, परवरिश किया उसका। और उस सरोवर से आज 7 फूल तो कल 9 फूल, फिर 11 फूल, फिर 15 फूल, फिर 18 फूल, ऐसे नियम था। बहुत बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन है उसका। हर हफ्ते में नई नई विधियाँ। 3 महीने तक दोनों पति पत्नी ने वो व्रत किया है। और उसके बाद में उस व्रत जब समाप्ति हुई तो शंकर जी और पार्वती को राधा और कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया है और वरदान क्या दिया है कि आप हमारे वृंदावन धाम में नित्य निवास कर सकते हो। आप लोगों को पता होगा शायद कि वृंदावन धाम ऐसा दिव्य धाम है जहाँ पर किसी भी देवता को प्रवेश नहीं है, कोई भी देवता वहाँ निवास नहीं करते हैं। सब आते हैं, जूता भी बाहर उतारते हैं वृंदावन के, नंगे पैर अंदर आते हैं, जितना काम है उतना करते हैं, रात को रहने का कोई इंतजाम नहीं है वहाँ पर देवताओं के लिए। वहाँ पर देवताओं को भगवान का प्रसाद भी प्राप्त नहीं होता है, केवल गणेश जी काम में मन में उनको रहने का निवास का परमिशन दिया है भगवान ने, उसकी कथा बताऊंगा आपको मैं। और केवल राधा शंकर जी और पार्वती को ब्रज में कहीं भी रहने का निवास परमिशन दिया है। इसके अलावा एक हनुमान जी हैं जो सब जगह रहते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी को परमिशन नहीं है रहने की। ब्रह्मा जी जो रचयिता हैं उनको भी परमिशन नहीं है। अरे एक बार ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा कि अरे ठाकुर जी तो सब बालकों के साथ खेल रहे हैं, इनका प्रसाद मिलना चाहिए, प्रसाद महाप्रसाद। तो जमुना जी के किनारे बैठे हुए कमलाकार सब बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, सब खिला रहे हैं उनको प्रेम से, ये देखो ये खाओ ये खाओ ये खाओ, अपने डब्बे से चाट चाट कर खिला रहे हैं, खुद चक्कर उनको खिला रहे हैं। फिर भगवान का भोजन हुआ और भगवान जमुना जी में हाथ धोने गए। ब्रह्मा जी सोचा कि अभी हम मछली बनते हैं, क्योंकि जूठन होती ना हाथ में, तो जो धोएंगे तो जमुना जी में जाएगी, तो मछली बनकर खा लेंगे उसको और भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा। तो भगवान गए हाथ धोने के लिए, वो झुके जल में जमुना जी के, तो क्या देखते हैं मछली बने हुए हैं ब्रह्मा जी। तो दोना में जल लिया और जाके जमीन पर हाथ धो लिया नहीं मिला उनको महाप्रसाद। ऐसा है स्थिति, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को भी वहां का प्रसाद नहीं मिलता है और हम जैसे पतित लोग जाके वहां महाप्रसाद खा के आते हैं, है ना। कहने की बात यह है कि ऐसा दिव्य वृंदावन धाम है, तो इनको शिवजी पार्वती को उन्होंने वहां पर चिरंतन निवास, और यही पार्वती देवी वृंदावन धाम की लीला में पूर्णमासी देवी बनकर उन्होंने अवतार लिया है। पूर्णमासी देवी गोपी, हाँ गोपी बनकर अवतार लिया है। और वो सारी जितनी गोपियाँ थी, यशोदा माई प्रभावती देवी जैसी जितनी गोपियाँ थी, बड़ी गोपियाँ बुजुर्ग गोपियाँ, वो सबकी गुरु थी वो। और उनके पुत्र के रूप में कृष्ण के गुरु सांदीपनि ने जन्म लिया है। और सांदीपनि की एक पुत्र एक कन्या है नंदीमुखी और मधुमंगल, वो कृष्ण के सखा और राधा रानी के सखी नंदीमुखी बनी हुई है और इन्होंने लीला में सहभाग दिया है। और एक व्यक्ति है जिनको हमेशा कभी भी आ सकते हैं, वो नारद मुनि जी, लेकिन रात को नहीं निवास करते हैं, रात को निवास करने का परमिशन नहीं है उनको। तो ऐसा है ब्रजधाम। तो ये जो मैं आपको कथा बताने वाला था गणेश जी की, संक्षेप में बताऊंगा कि वृंदावन धाम जो है ना उसमें 137 वन है, 137, उसमें से 12 वन जो है उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, उसमें 108 वन बहुत प्रिय है और 108 में से 12 वन उनको अति प्रिय है, और उन 12 में से सबसे प्रिय वृंदावन धाम है, नंबर 1 टॉप मोस्ट प्रिय। और वृंदावन में क्या क्या है, वृंदावन में आज का जो वृंदावन जाते हैं ना आप लोग, वो वृंदावन तो है ही, वो तो भौगोलिक ज्योग्राफिकल वृंदावन है, लेकिन उसमें नंदगांव भी है, उसमें काम्य, उसमें जावट भी है, उसमें बरसाना भी है, उसमें जमुना जी भी है, उसमें गोवर्धन भी है, ये सब मिलकर 20 कोस का वृंदावन बनता है, जो भगवान को बड़ा प्रिय है। उसमें भगवान बहुत सारी लीला करते हैं, खास करके रासलीला गौचारण लीला सब करते हैं। तो नंबर 2 का जो है वो है काम्य वन, काम बन जाए तो काम बन जाए, मतलब जो काम में काम बनने में जाएगा उसके सारे काम मनी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। काम बन जाए तो काम बन जाए, ऐसे कहते हैं ब्रजवासी लोग। तो उस जगह पर ऐसा हुआ था कि एक बार बलि जो थे, बलि दैत्य राक्षस, भगवान के भक्त थे वो, लेकिन फिर भी दानव रूप में आए थे, दैत्य रूप में। तो उन्होंने सभी देवताओं को निस्तेज करके एक बार परास्त कर दिया, अनंत बार परास्त किया, लेकिन एक बार जब परास्त किया तो सारे देवता को इतना हतबल कर दिया, इतना परेशान पीड़ित कर दिया कि सब देवता भगवान के पास रो रो के आए कि भगवान कुछ करो, हमारा तो राज्य है खत्म हो गया, मान समाप्त हो गया, पद खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। तो फिर भगवान ने कहा कि आप गणेश जी के पास जाओ, अपना नेता बनाओ, उसको सेनापति बनाओ, और दोबारा बलि को आह्वान दो, आक्रमण करो उसके ऊपर, चैलेंज करो उसको। तो देवताओं की हिम्मत नहीं होती, अभी भी हार के आए थे, वो दोबारा बोल रहे जाओ आक्रमण करो। फिर भगवान ने कहा था इसलिए आक्रमण किया, गणेश जी को जाके प्रार्थना किया, गणेश जी को प्रसन्न कराया, और गणेश जी ने सेनापति बनकर आक्रमण किया। तो बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी परास्त हो गए, अभी इतनी हिम्मत कैसे आई। तो घनघोर युद्ध किया, हाँ, बलि के साथ में बलि के पुत्र, फिर उसके मित्र बाणासुर, और सब, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र यम सब लोग भिड़ गए एक दूसरों को। तो गणेश जी ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि सारे राक्षसों को एक ही साथ बेहोश कर दिया उन्होंने, और अकेले खड़े रहे ऐसे, और राक्षस लोग कई कुछ बहुत देर तक मूर्छित रहे, और जैसे होश में आए बलि के साथ सब राक्षस भाग गए वहां से, इतना तेज गणेश जी के बीच में। तब विष्णु वहां प्रकट हो गए, शंकर वहां प्रकट हो गए, पार्वती प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु ने गणेश जी को वरदान दिया, अभी तुम यहां निवास कर सकते हो। तो गणेश जी आज भी काम्य वन में निवास करते हैं, विघ्नहर्ता भगवान है, सब देवताओं का, सब विघ्नों को हरण करते हैं। भगवान की भक्ति में, भगवान की प्राप्ति में जो विघ्न आते हैं उसको हरण करने के लिए गणेश जी को शक्ति दिया गया है। और हम लोग कहते हैं हमारी गर्लफ्रेंड को पटाने में जो मुश्किलें आती हैं उसका विघ्न मुश्किल दूर करो, हमारे धन कमाने में जो विघ्न आते हैं वो विघ्न दूर करो, हमारी समृद्धि में, भौतिक समृद्धि में जो विघ्न आते हैं वो दूर करो। अरे तो वो तो करेंगे, वो मतलब उतनी शक्ति है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा अधिक शक्ति उनको भगवान ने दी है जो कोई उनके लिए मांगता ही नहीं है उसके बारे में। हमारे भौतिक बद्ध जीवन में भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में जितनी बाधाएं हैं, जितने विकार हैं, जितने रिपु शत्रु हमारे रास्ते में बैठे हुए हैं, वो सबको वो नष्ट कर सकते हैं, इसलिए वो विघ्नहर्ता है। भक्ति के मार्ग के विघ्नों को हरण करने वाले गणेश जी हैं वो, इस भावना से उनका पूजन करना चाहिए गणेश उत्सव में। तो ये हुए गणेश जी। फिर शंकर जी, अभी इन्होंने आज सुबह प्रवचन में सुन रहा था कि गौलोक धाम में जब भगवान रहते हैं तो वहां पर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो होती नहीं है, जो इस वृंदावन में होती है। ये वृंदावन तो प्रतिकृति है ना उसकी, जब भूमि देवी रोते रोते गई थी वहां पर, तो उस समय भगवान ने अपने गौलोक धाम का 84 कोस का हिस्सा जो है वो भूमि पर भेज दिया था, पृथ्वी पर, और कहा था हम आएंगे। तो यहाँ पर जो वृंदावन प्रकट हो गया है, जो आपको आजकल मथुरा में दिखाई पड़ता है, मथुरा स्टेशन में उतरने के बाद हम जाते हैं उसके अंदर, वो 84 कोस का एक हिस्सा है गौलोक वृंदावन का। जैसे गौलोक अनंत है, ये भी अनंत है, लेकिन फिर भी एक हिस्सा है, टेक्निकली तांत्रिक दृष्टि से एक हिस्सा है उसका वो। तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और लीला करेंगे। तो वहां पर वो हमेशा 16 साल के उम्र में रहते हैं, किशोर अवस्था में रहते हैं, नौजवान, नव नवायामान नौजवान रहते हैं। राधा रानी भी ऐसे ही नौजवान रहती है। तो वहां पर बालक बनने का दर्शन नहीं है, जन्म लेने का दर्शन नहीं है, बाल लीला नहीं है, बाल लीला जन्म लीला यहां पर है। क्योंकि जब अवतार लेते हैं तो यशोदा माई का पुत्र बनकर आते हैं, देवकी का पुत्र बनकर जन्म लेते हैं मथुरा में, फिर वहां से जाते हैं गोकुल में, फिर यशोदा के गोद में सोते हैं, फिर उनका स्तनपान करते हैं, हाँ, तोतले तोतले बोल बोलते हैं, हाथ पकड़कर चलना सिखाती है मैया, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं उनको मैया हाथ पकड़कर चलाना सिखाती है, जो ऐसी वाणी बोलते हैं जो वाणी के आधार पर पूरा विश्व चल रहा है, भगवद गीता जैसी वाणी, ऐसे भगवान को यशोदा माई बोलना सिखाती है। ये जो सुंदर सुंदर लीला है ये गौलोक धाम में नहीं है। दूसरी एक चीज गौलोक धाम में नहीं है, वहाँ पर राक्षस लोग नहीं है, राक्षसों का वध नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि तो भगवान को भी अनेक रस है उनके अंदर। एक रस है वीर रस, उनको भी बहुत लड़ने की इच्छा होती है, बहुत युद्ध करने की, कुश्ती खेलने की, हाँ अपना क्या कहते हैं उसका स्किल जो है ना, कौशल, युद्ध कौशल, शस्त्र चलाने का सही सही में। हाँ जब कोई पिता और बच्चा जब लड़ाई करता है तो वो तो खेल खेल में लड़ते हैं ना, पिताजी हार जाते हैं, बच्चा छाती पर बैठ जाता है, बोले पिताजी को हरा दिया मैंने, चितपट कर दिया, सब ऐसा ही होता है। लेकिन सचमुच की लड़ाई करने की भगवान को इच्छा होती है, तो भगवान के वहाँ के कुछ भक्त जो है वो राक्षस बनकर जन्म लेते हैं यहाँ पर और भगवान की युद्ध की इच्छा पूरी करते हैं। जैसे कि कंस है, अरिष्टासुर है, हाँ पुतना है, शक्टासुर है, तृणावर्त है, बहुत सारे राक्षस जो हैं वो सब लोग भगवान के भक्त हैं, वो यहाँ पर आते हैं और भगवान के युद्ध की जो जिजीविषा यानी कि भूख है उनकी, तृष्णा है, उसको मिटा देते हैं, संतुष्ट करते हैं उनके, लड़कर उनके साथ में। तो वो भी नहीं है वहाँ पर, वो वहाँ पर है। तो भगवान का बाल रूप, अभी आप सोचिए जो सर्वांग सुंदर है, अति लावण्य संपन्न है, उनके एक एक श्री अंग इतने सुंदर हैं, सर्वोत्तम सुंदरता है वो, किशोर अवस्था में रहते हैं, अगर वही व्यक्ति अगर बालक बन के आएगा तो कितना सुंदर देखेगा। अरे हमारे देश में, अपने पृथ्वी पर, अफ्रीका में एक देश है ना, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, उसमें लोग बहुत काले रंग के होते हैं, बहुत खराब दिखते हैं, उनमें से भी जब बालक होता है ना वो, तो भी बहुत प्यारा लगता है वो। बालक अवस्था ऐसी होती है, कितना भी कुरूप बालक हो लेकिन बालक होने से उसकी एक आकर्षकता होती है उसके अंदर, सब लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसके अदाएँ, उसकी लीलाएँ देखकर किसी का भी मन मोहित कर लेता है बालक। तो एक कुरूप मनुष्य का बालक भी आकर्षक हो सकता है, तो सर्वांग सुंदर भगवान जब बालक बन के आएंगे तो कितने सुंदर होंगे। तो ये बात जानकर, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए शिवजी महाराज जो है वो कैलाश से आते हैं वृंदावन धाम में, एक ऋषि बनकर आते हैं और मैया के दरबार में आते हैं नंदगांव में, बोलते भवती भिक्षान देही, तो मैया आती है मोती माणिक चावल सब लेके आती है भिक्षा देने के लिए। तो कहते नहीं मैं ऐसी भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूँ। बोला क्या चाहिए फिर आपको? बोले मैं मोती का लालच नहीं, मुझे ना धान्य का लालच है ना ऐश्वर्य का लालच है, मैं तो लाला के दर्शन करने आया हूँ, तुम्हारे घर में जो लाला जन्म लिया है उसका दर्शन करने आया हूँ। तो मैया को डाउट होता है मन में, संशय आता है, अरे आज ये कंस के लोग कभी स्त्री बनकर आए, कभी बैल बनकर आए, कभी घोड़ा बनकर आए, कभी हवा बनकर आए, कभी गाड़ी बनकर आए, और आज राज साधु बनकर आए पहली बार। हाँ साधु बनकर भी आने लगे आप, तो बड़ा क्रोध किया उसने, और तुम सब लोग लुच्चे हो, तुम सब कंस के चेले हो, कंस के भेजे गए हो, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हारे चक्र में नहीं आने वाली, जाओ चले जाओ, ये लेना है तो ले लो, तो गेट आउट। तो बहुत गिड़गिड़ाते वो, बहुत मनाते हैं, मैया मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, दूर से कैलाश से तो आए थे ना, बहुत दूर से आया हूँ, लाला के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं उनका भक्त हूँ। फिर भी मैया जो है लाला की सुरक्षा के लिए बिल्कुल मना कर देती है, एकदम ऐसे मना करती है, फाइनली दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर देती है जोरदार धड़ाम से, वो चली जाती है, जाओ आपके चक्र में मैं नहीं फंसने वाली। बड़े उदास होते हैं शंकर जी महाराज, पासी के वन में जाके बैठते हैं, पर्वत को उतरते हैं, है ना, पर्वत बने हुए ना वहाँ पर, खुद नीचे उतर कर एक वन है वहाँ पर बैठ जाते हैं और रो रो कर पुकारते हैं। हम सब लोग पुकारेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रो रो के पुकारते हैं, रो रो के पुकारते हैं, दिल से पुकारते हैं। भगवान बालक भी होंगे छोटे से, तो भगवान तो भगवान ही होते हैं ना, अपने भक्त की भावना को जानते हैं, अंतर्यामी है वो, सबको पहचानते हैं। तो बालक जब कुछ अपनी इच्छा तमन्ना पूरी करना चाहता है तो क्या करता है, बालक के पास ऐसी क्या वस्तु है जो जब प्रकट करता है तो सारे महान लोग भी हतबल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हाँ रोना। उसके पास ऐसा एक अस्त्र है जो बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भी है तो भी हैरान हो जाते हैं जब बालक रोता है। हाँ मैं तो कुछ डॉक्टर हूँ, लेकिन जब मुझे पहली बार जब बालक हुआ तो जब मेरी बेटी रोती थी तो मेरा दिमाग एकदम आउट हो जाता था, तो समझ में नहीं आता था क्यों रो रही है। सब नॉलेज है, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन जब किसी की बेटी रोती है, बालक रोता है, तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो दिमाग ही काम नहीं करता है। हम लोग लेके भागते थे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, खुद डॉक्टर होते हुए भी, क्योंकि तो भावना जो होती है ना वो बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है। तो फिर ठाकुर जी ने, कन्हैया ने, बालक ने अपना अंतर का जो अस्त्र होता है ना वो निकाला और रोना शुरू कर दिया। फिर रोते शुरू करते ही बालक को स्तन पे लगाया तो स्तन छोड़ दिया, वो आवाज़ करने वाला खिलौना घुमाया तो उसको भी फेंक दिया, मक्खन दिया तो भी उसको मुंह से बाहर निकाल दिया। जो 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 तरीका होता है रोज शांत करने का, सारे तरीके अपना लिए, लेकिन एक तरीका अपनाया तो दूसरी बार और ज़ोर से रो रहा है, और तरीका अपनाया तो और ज़ोर से रो रहा है, और कुछ करके तो और ज़ोर से रो रहा है, हाथ पाँव झाड़ रहा है। अभी मैया की हालत ख़राब हो गई, मैं क्या करूँ, सब कुछ उपाय कर लिए, जो जो पसंद का काम है सब किया, लेकिन ये तो रोना कुछ अजीब रोना है, पता नहीं कुछ रोग हो गया बालक को, क्या हो गया, कोई बुरी नज़र लग गई किसी की, किसी ने तोना कर दिया बालक के ऊपर, क्या क्या विचार आए मन में उसके, खुद रोने लगी, होश खोने लगी। सब सखियां आ गई आजू बाजू से, अरे कन्हैया रो रहा है, कन्हैया रो रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। उतने में पूर्णमासी आई, स्वयं पार्वती जी हैं, वो गुरु बनकर आई है उनकी, वो कह रहे क्या हो रहा है, तो बालक रो रहा है, लाला रो रहा है। तो कहते हैं कि अरे साधुओं की कृपा से सब चमत्कार हो जाते हैं, आपने जिसको भगा दिया था ना वो बड़े विचित्र साधु हैं, वो बड़े दूर से आए हैं। वो भी जानते हैं बेचारे हमारे पति आए दर्शन करने के लिए, दर्शन नहीं दिया मैया ने, क्या करें, वो भी कुछ सिफारिश करना चाहती, बोले वो साधु जो अभी रो रहे हैं बैठ के वहाँ पर, उनको बुला लो, हो सकता है उनके स्पर्श से, कृपा से, आशीर्वाद से, मंत्र से तुम्हारा लाला रोने का बंद करेगा। तो जिस साधु को बुरे भले शब्द बोलकर, कठोर वचन बोलकर भगा दिया गया था, उसी को आरतियां लेकर सखियों को भेजा गया, जाओ उनको फूल की माला पहनाकर सम्मान पूर्वक ले आओ। सब गए भाग के, हाँ आज उस वन का नाम आशेश्वर वन लिखा गया है। वहीं पर गए और शिवजी को बोला, मैया बुला रही है, शिवजी को विश्वास नहीं हुआ, जिस मैया ने राक्षस का दूत समझकर मुझे भगा दिया था, कंस का चेला बनकर भगा दिया था, वही बुला रही है, वह यकीन नहीं हुआ, फिर बोले नहीं बुलाया है, चलो। तो भाग के आए वो, और जैसे ही आए लाला को लेकर मैया आई, और शंकर जी ने लाला के चरणों का स्पर्श किया, अपने चरणों को, उनके चरणों को माथे पर लगाया, तुरंत रोना बंद हो गया, तुरंत रोना बंद हो गया। तब क्या बोलती मैया, अभी तुम यहीं रहो, जब जब लाला रोए तब तब दर्शन दियो। उसके बाद में बोलती है, अभी यहीं रहो, आगे कभी रोएगा तो तुम्हीं को बुलाएंगे, तो वहीं रह गए वो। और उन्होंने वादा भी किया कि इनको जब भी भोग लगाएंगे पहले उसके बाद आपको लगाएंगे उनका भोग। आज भी वो रीति चले आ रही है, शंकर जी को ठाकुर जी का महाप्रसाद पहले खिलाते हैं, उसके बाद बंटवारा होता है लोगों को। जो अभिषेक का जल है वो पहले शंकर जी पे चलाते हैं, उस नंदीश्वर का उधर एक मंदिर है एकदम पहाड़ पर, ठाकुर जी के मंदिर के पास में ही है, आज भी भोग लगता है पहले शंकर जी को लगता है, उसके बाद में अभिषेक होता है, तो जल वो पहले शंकर जी पे चढ़ाते हैं। ऐसा ब्रजभूमि है, बहुत अद्भुत है, हाँ वहाँ पर केवल दिल की बातें होती है, हृदय की बातें होती है, माधुर्य प्रेम चलता है, कोई ऐश्वर्य, कोई धन, कोई बुद्धि, कोई विद्या का प्रमाण वहाँ पर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है वहाँ पर, ना ठाकुर जी उसको मानते हैं, ना भक्त लोग उनको मानते हैं, उन चीज़ों को, केवल प्रेम और प्रेम है, प्रेमल प्रेम की भूमि है वो। तो ऐसी भूमि में ठाकुर जी और राधा रानी अपने अंतरंग और अंतरंग और अति अंतरंग लीलाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, अति उत्कट प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए बरसाने में, नंदगांव में, जावट में कभी कोई राक्षस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो जब भी वो गोकुल में थे ना, तो गोकुल में तो सबसे पहले पूतना आई, इतना सा बालक को विष पिलाकर मारने के लिए, वो मर गई। उसके बाद में वो गाड़ी के रूप में शक्टासुर आया, उसके बाद में हवा के रूप में, हवा मतलब तृणावर्त यानी साइक्लोन, आंधी तूफान बनकर राक्षस आया। अरे सुखदेव जी ने भागवत में कुछ गिने चुने राक्षसों का वर्णन किया है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि रोज एक राक्षस मथुरा से आया करता था, कंस के पास में से रोज, और रोज भगवान उसका वध करते थे, और रोज भगवान उसका वध करते थे, दोपहर का भोजन करते थे। इतने राक्षस थे। अरे सुखदेव जी के पास समय कहाँ था? परीक्षित को शाप मिला था ना 7 दिन का, तो कितना बताएंगे उनको। इसलिए गिने चुने राक्षसों का वर्णन किया है। तो एक दिन नंद बाबा सब परेशान हो गए, बोले यहाँ पर बहुत डेंजर है, एक नदी पार करते ही कंस की नगरी है, वहाँ से राक्षस आए आते जाते रहते हैं, रोज की परेशानी है, बालक को संकट है, बालक का जीवन संकट में है, तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि वो आए क्यों थे वहाँ पर? क्योंकि वृषभानु बाबा को भी संतान नहीं थी, वो 85 वर्ष के हो चुके थे, नंद बाबा को भी संतान नहीं थे, वो भी 80-85 साल के हो गए थे, दोनों बूढ़े हो गए थे, बालक नहीं हुआ था। तो जमुना किनारे पे रहेंगे तो शुभता होगी, पवित्रता उत्पन्न होगी, तो बालक प्राप्ति होगी, इसलिए नंद बाबा और वृषभानु महाराज दोनों जमुना किनारे में रहने को आए थे। यथावकाश कृष्ण की प्राप्ति हुई, बलराम जी की प्राप्ति हुई, वृषभानु महाराज को राधा रानी की प्राप्ति हुई, सब संतुष्ट हो गए, उद्देश्य सफल हो गया। बोला चलो अभी यहाँ पर संकट हो रहा है तो क्यों रहना है यहाँ पर। तो सब लोग बिल्कुल अपने राज्य को शिफ्ट करते हैं। वृषभानु महाराज अपने सभी संपत्ति को लेकर बरसाना में दोबारा बस जाते हैं, और नंद बाबा अपने सारे संपत्ति को लेकर नंदगांव में बस जाते हैं। तो जब दूसरे दिन राक्षस आता है, देखता है तो पूरा खाली हो गया, पूरा कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो वापस लौट के आता है राक्षस, बोला कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो कंस खुद निकलता है, तब मैं खुद जाके देखता हूँ, सब ढूंढता है गोकुल में, कोई मिलता नहीं। तो आगे 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 गोवर्धन को पार करके बरसाने पहुँचता है। आप में से कितने लोग बरसाने गए हैं? बरसाना राधा रानी का धाम है, राधा रानी का घर है वहाँ पर। जन्म तो रावल में गोकुल में हुआ था, लेकिन सारा बचपन से लेकर अंत तक लीला जो है वो बरसाने में किए। राधा रानी का निज धाम है, राधा रानी का पिताजी माताजी का घर है वहां पर। तो वो कंस वहां पर आया। अभी कंस जैसे ही बरसाने में आया तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। कंस तो राजा का वस्त्र मुकुट पहनकर आया था, तलवार वलवार लेकर आया था, लेकिन सारे अलंकार सारे वस्त्र सारे मुकुट के अंदर जो शरीर था, जो पुरुष का लेकर आया था, जैसे ही बरसाने में आया वो स्त्री का हो गया। मतलब कंस जो है वो कन्या बन गया। अभी समझो मैं अभी धोती कुर्ता पहनकर बैठा हूँ, अचानक मैं अगर कन्या बन गया, आपको किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चलेगा कि अंदर गड़बड़ हो गई। तो कंस को पता चल गया कि मैं कन्या बन गया, तो इतना संकोच हुआ उसको, इतना संकोच हुआ, इतना रोया हुआ एक्चुअली। अभी आप यहाँ पर बैठ के हंस रहे हो, लेकिन कंस का एक पूरा चैप्टर है गर्ग संहिता में कि कंस क्या चीज था। हाँ, दिग्विजयी था कंस, उसने ऐसा कोई राक्षस छोड़ा नहीं दुनिया में, उसको परास्त नहीं किया और नौकर नहीं बनाया उसको। जितने राक्षस मरे ना कृष्ण के हाथ से, वो सारे कंस ने अपने हाथ से परास्त करके नौकर बनाया था उनको। हर एक राक्षस सब कंस के गुलाम थे, और सारी देवताओं को परास्त कर दिया था उसने। इतना महान विजयी, शक्तिशाली, बलशाली, दिग्विजयी था वो। वो जब आया अपने इतराते हुए गर्व के साथ में, तो वो कन्या बन गया, तो बड़ा दुखी हो गया वो। और कुछ देर बाद देखो, औरतों को सब पता चलता है ना, कुछ देर बाद सब गोपियों को पता चला कि ये कंस महाराज जो है ना, वो भी कंसनी गोपी बन गए। तो सब लोग तालियां पीट कर हंसने लगे, और वो जोर से रोने लगा, वो जोर से तालियां पीटने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, तो वो सबके चरणों में गिरने लगा। अरे बचाओ गोपियों, बचाओ, मेरा हालत खराब हो गया, कुछ ना कुछ उपाय करो, तुम्हारे धाम में क्या चमत्कार है पता नहीं, मैं इतना दिग्विजयी, शक्तिशाली, महाबलशाली कंस महाराज, मेरा क्या हो गया यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा, कुछ दया करो, कृपा करो। बोला नहीं, अच्छा हो गया, हमको तुमने इतना कष्ट दिया, सब लोगों को, कन्हैया को कष्ट दिया, उसको मारना चाहते हो, अच्छा हो गया तुम श्री बन गए। 6 महीने गोपियों ने कंस के हाथ से कंडे लिपवाए, गौशाला को धुलवाया, गोबर को इकट्ठा करवाया, उसके कंडे बनवाए, उसके हाथ से कंडे सुखवाए, वो कंडे को इकट्ठा करवाया, हाँ टोकरी दिया सर पे, कंडे सुखवा कर घर में जमा करवाया। 6 महीने तक काम कराया, हंसते हंसते तालियां पीटते पीटते, वो ये रोते रोते काम करता रहा, बंद करो उसको। 6 महीने के बाद में राधा रानी ने दर्शन दिया, अपने पापा का हाथ पकड़कर आई वो, और देख रही है कंस रो रहा है। तो कंस जो है वो जाके बाबा के चरणों में गिरे, बाबा कृपा करो। तो वृषभानु महाराज जो है वो छोटी सी लाली अपनी किशोरी राधा रानी को बताते हैं, बस कर दे माफ़ उसको, अभी 6 महीने हो गए रो रहा है बेचारा, हाँ सबको पता चल गया क्या हालत है उसकी। तो राधा रानी, इतनी सी राधा रानी, हाँ इतनी सी किशोरी, इतनी कोमल कृशांगी कोमलांगी, ऐसी उंगली उठाती है और कहती है दोबारा आओगे तो परमानेंट कन्या बन जाओगे, चले जाओ यहाँ से, कि मेरा कुंड है इसका नाम किशोरी कुंड है, इस पर कूद पड़ो, इसमें स्नान करते ही तुमको पुनः पुरुष शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो वो वैसे ही वस्त्र लेकर कूदता है और कूदते ही उसका शरीर पुरुष का हो जाता है, उसको खुद को पता चलता है। तो जब बाहर निकलता है तो वैसे ही गीले वस्त्र लेकर मथुरा तक भागता है, क्यों, अगर कहीं किशोरी का मन बदल गया दोबारा कन्या बन जाऊंगा। कंस महाराज, हाँ, जिसकी दहशत इतनी थी कि देवता भी उसके नाम से चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, उसका नाम निकालकर उसके बारे में बोलने के लिए मना थे किसी को, मथुरा में कोई बात नहीं करता था उस बालक के जन्म के बारे में जो बीच रात में हुआ था, वो कन्या थी कि पुरुष लड़का था कि क्या हुआ, कहाँ गायब हो गया, उस पर कन्या कैसे बन गई, आकाश में कैसे उड़ गई, किसी को बात करने का अलाउड नहीं था, सब चुपचाप डर के मारे दहशत के मारे रहते थे। वो कंस जो है वो भय के मारे भाग गया, 50 किलोमीटर आज का अंतर है, पता नहीं उस समय कितना अंतर था, बरसाने से मथुरा तक भागा हो, दोबारा कभी लौट कर वापस बरसाना नहीं आया हो, वो नहीं आया, उसका कोई साथी भी नहीं आया। इसलिए आप जब बरसाने की लीला पढ़ते हैं तो कई राक्षस की लीला नहीं है कि वो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तो वहाँ से राक्षस आया और उन्होंने उनको मारा, ऐसा बरसाने में कभी हुआ नहीं। कारण राधा रानी बरसाने में कृष्ण के साथ में बहुत ही अंतरंग लीला करती है, बहुत ज़्यादा अंतरंग लीला। तो ये जो चटपटी लीलाएँ हैं नंदगांव बरसाने की, वो इतनी मधुर है, इतनी उत्कट हैं कि उसमें राक्षस का डिस्टर्बेंस होना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी मधुर लीला भगवान की माखन चोरी की है। तो ये जो माखन चोरी की लीलाएं हैं वो बड़ी मन को प्रसन्न करती है, जिसके द्वारा भगवान ने गोपियों को अनंत आनंद दिया, जिसका कोई था नहीं लगा सकता है, इसकी गहराई कोई समझ नहीं सकता है, उतना आनंद भगवान ने माखन चोरी करके गोपियों को दिया। रोज जब गोपियां मक्खन बनाती थी दही मंथन करके, तो केवल एक ही चिंतन करती थी कि आज मेरे घर पे आकर वो चोरी करें, उसी के लिए ही करते थे, उसी को। उसी के लिए मक्खन बनाती थी, उसी का गीत गाकर बनाती थी, उसी के चिंतन से बनाती थी और प्रार्थना करते कि आज मेरे घर पे आ जाए। लेकिन ऊपर से नाटक करती थी रोज कि उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, उनका अपराध कोई हुआ जा रहा है, उनके घर का मक्खन चोरी हो रहा है, और बार बार कंप्लेंट करने के लिए सुधा मैया के घर पे आती थी। उसका भी हमारे आचार्य बताते हैं क्यों आती थी घर पे, क्योंकि कृष्ण का चेहरा देखे बिना वो उनका रहना मुमकिन नहीं था, कृष्ण अगर नज़र से ओझल हो गए तो वो बेचैन हो जाती थी। तो बहाना है कंप्लेंट करने का, लेकिन उद्देश्य है दर्शन करने का। तो कंप्लेंट कैसे कर रहे हैं, देखो भवन में आ गए और यशोदा को कंप्लेंट करना है, यशोदा मैया इस तरफ खड़ी है, आप भवन में आ गए, मैया इस तरफ खड़ी है, तो मैया को बोल के बोलना चाहिए ना, मैया को देख के बोलना चाहिए ना कि मैया की ओर देखो तुम्हारा बालक ऐसा है, तुम्हारा बालक घर पे आता है, तो मैया यहाँ खड़ी है और यहाँ देख कर कंप्लेंट कर रही है, क्योंकि उम्मीद है कि यहाँ से कान्हा आएगा और दर्शन होगा। और क्या क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारे घर पर आता है और माखन चुराता है, अगर माखन नहीं मिलता है तो हमारे सोते हुए बालकों को चिमटा निकालता है, हमारे सोते हुए बालक के पलने में जाकर कान में पानी डालता है, अगर और भी कुछ संतुष्टि नहीं हुई तो पेशाब करके जाता है, और भी संतुष्टि नहीं हुई तो क्रोध से जाकर हमारे गौशाला में घुसता है और बछड़ों को छोड़ देता है, और बछड़े सारे गाय का दूध पी लेते हैं, हम जाते हैं दूध निकालने के लिए दूध समाप्त हो जाता है, ऐसे कई प्रकार के कंप्लेंट कर रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे बालक के शरीर में क्या प्रकाश है, हम अंधेरे में रखते हैं हमारे मटके फिर भी इसको दिखाई पड़ता है, और चढ़ के उस मक्खन को चुरा के खा लेते हैं। अरे खा तो लेते हैं कोई बात नहीं, बच्चा खाए आपको कोई दुख नहीं, लेकिन खाने के बाद में बंदरों को खिलाते हैं, अब ये भी कोई बात हुई, हमारा इतना कीमती मक्खन इतनी मेहनत से बनाया हुआ, सारे बंदरों को बुलाता है, सारे मटके खाली कर देता है। ऐसी कंप्लेंट यशोदा मैया यहां खड़ी है और यहां देख के कर रहे हैं। यशोदा मैया बोलती थी, देखो मेरे घर पे 900,000 गायें हैं। 900,000 तो एक नंबर है, लेकिन जैसे हम शास्त्र पढ़ते ना, तो हम पढ़ते हैं कि नंद महाराज ने 100,000 गाय दान कर दिया, 200,000 गाय दान कर दिया, तो दो तीन उत्सव के अंदर ये सब गाय खत्म हो जाएगी ना, ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत लाखों गायें थी, 900,000 तो मिनिमम नंबर था, मिनिमम नंद पदवी प्राप्त करने के लिए 900,000 होना जरूरी था, लेकिन उनके पास तो अनंत गायें थी, क्योंकि जन्म के समय में 200,000 गाय दान कर दिया उन्होंने, बाद में ऐसा लिखा नहीं कि 700,000 बच गई, ऐसा कुछ लिखा है, तो अनंत गायें थी। तो एनी वेज वो कहती थी कि मैंने इन लाखों करोड़ों गायों में से 100 गाय मैंने ऐसी बनाई है कि जो केवल कमल के सुगंध वाली घास खाती है, जिसके लिए मैंने अलग आंगन बना के रखा है, जो घास वहाँ बनाई है मैंने उससे कमल की खुशबू आती है और वो वहाँ चराती है, मैं वहाँ चराती हूँ उनको, उसके बाद में जो उनका दूध निकलता है उस दूध को कमल की खुशबू आती है, उस दूध को जमा कर जब दही बनाती हूँ, उसका मंथन करती हूँ, जो मक्खन निकालती हूँ उससे बहुत गहरा कमल का सुगंध आता है, और वो कमल सुगंध वाला, हाँ पद्मगंध वाला, गाय का नाम पद्मगंधा, मक्खन का नाम पद्मगंधा मक्खन, वो पद्मगंधा मक्खन जो है वो मैं मेरे बालक को खिलाती हूँ, सुबह उठ के ही पेट भर के खिलाती हूँ, पूछती हूँ और चाहिए क्या, मना करता है, मैं ऐसा पेट भर के मक्खन खिला के भेजती हूँ, तुम्हारे घर का मक्खन क्यों खाएगा वो, मेरे घर में इतना मक्खन है, इतनी गायें हैं, इतना मैंने फर्स्ट क्लास 5-स्टार अरेंजमेंट बन के रखा है, और तुम कह रहे हो तुम्हारे घर में आके चुराता है, कैसे यकीन करूं, एक बार तो पकड़ के लाया करो ना, इतनी कंप्लेंट कर रही हो, एक बार मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ले आया करो। अभी देखो कौन बोल रही है, प्रभावती मतलब नंद महाराज की बड़ा भाई जो है उपनंद, उसकी पत्नी है वो, मतलब जेठानी है, जेठानी, आप जानते हैं जेठानी का कितना सम्मान होता है, भी जेठानी आके कंप्लेंट कर रही है, फिर भी उसको समझा रही है वो कि जेठानी जी समझती हूँ मैं, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती आप क्या बोल रहे हो, और आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, अब एक काम करो, कभी इनको पकड़ के तो लाया करो, फिर मान लूँ मैं कि भाई मेरा मक्खन में कुछ खोट है, तुम्हारा मक्खन चोरी करने को आता है। तो प्रभावती ने तो ठान लिया कि भी इसको पकड़ना है, तो एक बार सब गोपियों ने निर्णय ले लिया कि अभी हम क्या करेंगे, एक कमरे में अच्छे अच्छे मक्खन के पात्र लगाएंगे, हाँ, और नीचे लगाएंगे उनको, और सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर देंगे, एक ही खुला रखेंगे जिसमें से वो आ सकते हैं, और सारा सेटिंग करके उन्होंने हर मटके पे घंटी बांध दिया और घंटी को बताया जैसे ही लाला मक्खन निकाल कर मुँह में डालेगा तुमको बजना है, और जैसे तुम बजोगी तुम्हारा आवाज़ आएगा, हम सब लोग छुपे हुए जो है चारों तरफ, वो जाके चारों तरफ से ऐसे छपक पड़ेंगे, सब लोग ने बहुत होशियार थे, वो कहते देखो इतने सारे गोपाल आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे, हम भी इतनी सारी हैं, तो अगर वो तुमको पता नहीं होगा किसको पकड़ना है तो तुम इसको पकड़ने में सब लोग भाग जाएंगे, तो तुम्हारा जो टारगेट है वो पक्का मन में करना है, तुमको इसको पकड़ना है, मतलब मधुमंगल को तुम पकड़ोगी, बलराम को तुम पकड़ोगी, कृष्ण को तुम पकड़ोगी, सुदामा को तुम पकड़ोगी, अर्जुन को तुम पकड़ोगी, उज्ज्वल को तुम पकड़ोगी, सुबल को तुम पकड़ोगी, ऐसा पूरा मैच फिक्सिंग कर दिया उन्होंने, सबको पता है हमको किसको पकड़ना है, बाकी किसको देखना नहीं है, बस अपना लक्ष्य को पकड़ना है, ऐसे सारे गोपियों ने फिट कर लिए। फिर कन्हैया अपने ग्रुप को लेकर आए, अरे इतने ऊंचे ऊंचे लगने वाले मटके इतने नीचे कैसे आ गए आज, बोले बहुत भाग्य का दिन है, पता नहीं सूरज पश्चिम में हुआ है कि पूर्व में हुआ है, आज बड़े खुश हो गए वो, एक दूसरे को देखने लगे कोई चाल तो नहीं है, तो मधुमंगल बोलता है देखो कुछ चाल तो है इसमें, क्योंकि हर रोज घंटी नहीं बंधी होती, आज सब में घंटी बंधी हुई है, तो निश्चित रूप से कुछ चाल है। तो भगवान घंटी से बोलते हैं, देखो घंटी आज हम जब मक्खन खाएंगे तो तुम नहीं बजना, क्योंकि घंटी को भगवान ने मर्यादा लिख के दी है ना कि जब भी हम भोजन करेंगे तुमको बजना है, तुम जब बजोगे तो हम खाएंगे, ये घंटी को सम्मान देकर रखा है, लेकिन वो सम्मान देने वाले जो है आज बोल रहे हैं कि आज हमारे आपको आदेश है, इच्छा है कि आज नहीं बजना है आपको, तो बोले ठीक है नहीं बजेंगे, तो सब लोग फिर अभी खुश हो जाते हैं, अभी षड्यंत्र रचा दिया उसको भगवान ने फेल कर दिया है, अभी हम लोग मक्खन खाने में फ्री हो गए, तो सब लोग जाके झपट पड़ते हैं, और जैसे ही खाने लगते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान उसको खाकर मुंह में डालते हैं जोर से घंटी बजने लगती है, टन 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 सारी गोपियां झपट पड़ती है और अपने अपने लक्ष्य को पकड़ लेती है। लेकिन कृष्ण भगवान इतने चतुर होते हैं, फटाफट लोगों को वो जो गोविंदा बनाते हैं एक खिड़की को लात मारकर खोल देते हैं और सब लोग खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहले वाले के जो ऊंचाई पर खिड़की है वो सब लोग अपने अपने पीठ पर चढ़ते हुए खिड़की से बाहर निकल जाते हैं इतने फास्ट, मतलब उनको समझने के पहले सब भागने लगते हैं। कृष्ण भगवान सबसे पहले भाग निकल जाते हैं, सारे ग्वाल बाल भाग जाते हैं। एक ग्वाल बाल जो है ना, जो सांदीपनि का बेटा है इसका नाम मधुमंगल है, वो बेचारा खिड़की में अटक जाता है। क्यों अटकता है? उसका पेट जो है ना वो इतना बड़ा है, खिड़की से भी बड़ा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग चढ़ रहे हैं उसको ऊपर से खींच रहे हैं निकालने के लिए, और नीचे से गोपियां खींच रही हैं। लेकिन जब तक बाकी सारे पतले पतले से ग्वाल बाल थे उनको तुरंत खींच लिया उन्होंने ऊपर से, लेकिन ये बेचारा मोटा जो है वो तो अटक गया खिड़की में, ये खींच रहे ऊपर से, वो नीचे से खींच रहे हैं। तो बाद में नीचे वाले विजयी हो गए और उसको गिरा दिया नीचे उन्होंने, और जैसे ही गिरा दिया ऐसे हाथ से मुक्के से डंडे से लात से हाथ सबसे मारना शुरू कर दिया उसको। तो चिल्लाने लगा, हे कृष्ण हे बलराम बचाओ बचाओ, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ बचाओ बचाओ। तो ये सब भाग रहे दूर से, लेकिन सुन रहे अपने बेचारा अकेला बच गया उधर। तो बोले नहीं नहीं, बलराम जी बोले कृष्ण भगवान को, नहीं नहीं हमारा मधुमंगल ब्राह्मण का पुत्र है उसको बचाना चाहिए। तो वो रिटर्न मार के आए, गोल घूम के आए, बोलते अरे तुम कैसी गोपी हो तुम, तुमको कुछ अकल है कुछ ज्ञान है? ये सांदीपनि के मुनि के पुत्र है, ये पूर्णमासी के पोता है, ये ब्राह्मण है, कहीं जनी वनी तोड़ देगा ना तो शाप देगा, तो तुम्हारे ऐसा पुत्र प्राप्त ऐसा पति प्राप्त होगा जो 7 औरत से शादी कर चुका है। और वो भी तुरंत खड़ा होता है, बोलता अभी तोड़ दूं क्या, जनी तोड़ दूं, शाप दे दूं कि ऐसी शादी सबसे होगी जो 7 पत्नियां प्राप्त होकर बुढ़े व्यक्ति के साथ शादी होगी तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, डर जाती गोपियां, बहुत सारी कोमल हृदय की है वो, सिंपल हृदय है उनका, सादगी वाला, तुरंत डर जाती है वो। तो कृष्ण बलराम ऐठ के बोलते हैं संतुष्ट करो इसको, आशीर्वाद लो उसका, सेवा करो उसकी। अभी तो सारी गोपियां जो अभी उसको लात मुक्के से मार रही थी वो जाकर पैर पड़ती हैं, बोलती क्या करें महाराज जी, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दो, कुछ करो कुछ बताओ। बोलते हैं आप सब लोग लड्डू बनाकर लेके आओ, और ऐसा लड्डू बनाओ कि रिपीट नहीं होना चाहिए किसी का, हर जितनी गोपियाँ उतने प्रकार के लड्डू होने चाहिए। सब लोग घर भागती हैं, डिस्कस करती हैं कोई रिपीट ना हो जाए, और सब लोग अपने अपने घर से अनंत व्यंजन लेकर लड्डू बनाकर लेके आती है। और वहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है गेवर कुंड, राधा रानी का बड़ा प्रिय कुंड है वो, अपनी 64 सखियों को लेकर वो स्नान करते हैं वहाँ पर रोज। तो वो कुंड के पास उसने सिंहासन बनाकर उसको बिठा देते हैं, और सारी गोपियाँ अपने अपने अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो उसको भोग लगाते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। और हमारे मधुमंगल महाराज बड़े प्रेम से वो सब लड्डू खाते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारे मन का जो पति है वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक लीला हो गई मक्खन चोरी की। दूसरी बार क्या हुआ, वो घंटी वंटी नहीं लगाई, लेकिन ऐसे तय किया था ना किसको पकड़ना है, तो प्रभावती की नज़र कृष्ण पे थी, क्योंकि प्रभावती को यशोदा माई ने बहुत बार डांटा है ना कि तुम हमेशा कंप्लेंट करती हो लेकिन कोई इसमें कुछ दम तो नहीं होता है, फिर पकड़ तो ले आओ। तो प्रभावती कृष्ण को पकड़ती है, हाथ पकड़ती है अच्छी तरह से, इसके हाथ में मक्खन है, इसके ओठों पर मक्खन लगा हुआ है, इतना बढ़िया प्रूफ और क्या हो सकता है। तो उसको पकड़ती है कलाई को और जोर जोर से लेफ्ट राइट करके नंद भवन की ओर जा रही है। आज तुम्हें पकड़ लिया है, तुमने इतनी बार मेरी बेइज्जती की है, हाँ आज मैं यशोदा माई को दिखाऊंगी कि देखो तुम अपने लाला को बड़ा संत समझती हो, सद्गुण संपन्न समझती हो, ये चोर है तुम्हारा बालक, ऐसे बताऊंगी। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अरे, क्योंकि क्या होता है ना, जब उसको पकड़कर वो ले जा रही है राइट लेफ्ट करके, तो कुछ बालक हंस रहे हैं, वो बोलते हैं अच्छा हुआ, तालियां पीट कर हंस रहे हैं, बोलते हमेशा तुम चुराते हो पकड़े हम जाते हैं, आज हम फ्री है तुम पकड़े गए, बहुत अच्छी बात है। कुछ सखियां भी हंस रही है कि रोज हमारे घर में चोरी करते हो और हमको उल्लू बनाकर भागते आते हो, अच्छा हुआ आज प्रभावती के हाथ पे पकड़े गए। कभी ना कभी तो दंड मिलना ही चाहिए ना शरारती आदमी को, कब सुधरेगा? तो बड़ी संकोच हो रहा है कृष्ण को, भले रास्ते में लड़कियां हंस रही है, लड़के हंस रहे हैं तालियां पीट कर, कुछ निकट जो निकट के सखा है जिवलक सखा है वो रो रहे हैं, कान्हा को कुछ छुड़ाए कैसे, लेकिन इतनी बड़ी गोपी, हाँ इतने बड़े गोप की पत्नी छुड़ाए कैसे उसको। तो कृष्ण ही बोलते हैं, देखो क्या है उसका नाम, ताई जी, हाँ ताई जी यानी ताऊ जी की पत्नी, देखो ताई जी, सब लोग हंस रहे हैं, तुमने तो मुझे पकड़ा ही है, तुम छोड़ने तो वाले नहीं हो, मैया के पास लेकर ही लाओगे मुझे जाकर, लेकिन अपनी चुनरी मुझे ओढ़ा दो, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है सबको देखते हुए। तो चुनरी ओढ़ा दिया और फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चल रही है। कुछ देर बाद बोलते हैं, देखो ताई जी कितना कस के हाथ पकड़ा है, अब जानती हो मेरी कलाई कितनी मुलायम है, देखो इतनी मुलायम कलाई को तुमने इतना कस के पकड़ा है, आगे का इसका सूज गया पूरा, पूरा खून जमा हो गया इधर, थोड़ा कलाई तो बदलो, मैं कहाँ भाग जा रहा हूँ, थोड़ा कलाई तो बदलो। तो प्रभावती को लगता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये हाथ से वो हाथ पकड़ूँ क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके पहले प्रभावती के बालक जो कृष्ण का बड़ा अच्छा यार है उसको इशारा करके रखा हुआ है, जैसे ही चुनरी के नीचे हाथ बदलने का समय आता है तो प्रभावती का बच्चा जो है वो घुस जाता है और उसका हाथ उसके हाथ में आता है और पीछे से कन्हैया जी निकल जाते हैं और ये बड़े उत्साह के साथ में चल रही है, पीछे से धीरे से सब भीड़ से निकल के कन्हैया जी अपने घर में भाग के पहले ही पहुंच जाते हैं। अरे मैया बड़ी भूख लग रही है, मक्खन खिला दो, मैया बहुत प्रेम से आती है उनको मक्खन खिलाती है और पेट भर के मक्खन खाता है, बोलते हैं मैया बहुत नींद आ रही है सुला दो मुझे अभी आप, तो सो जाता है लोरी सुनकर। हाँ कुछ देर के बाद में ये सब बहुत पहले हो गया है, कुछ देर के बाद में ये मोर्चा आता है नंद भवन में, बोले यशोदा दीदी सुना तुमने, अरे इतना शोर क्यों मचा रही हो, तुमने कहा था ना रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के ले आई हूँ। बोले अच्छा, क्योंकि उसको तो पता है अभी पहले ही आके मक्खन खा के सुला दिया उसको, तो बिस्तर पे सो रहा है। बोला अच्छा हाँ तो आओ तो सही, दिखाओ तो सही किसको लेके आए हो। तो वो बड़े बड़े कंप्लेंट करती है, पहले ऐसा किया वैसा किया, घर पे आया मक्खन तोड़ दिया, पूरा मटके तोड़ दिए, पहले मंदिर को खिलाया, फिर मैंने आज उसको पकड़ा, उसके हाथ में मक्खन है उसके मुंह में मक्खन है, आज तुम मानोगी मैं क्या कह रहे हूँ। अरे भाई दिखाओ तो सही, मेरे लाला को पकड़ के दिखाओ तो सही। तो चुनरी जब निकालती है तो क्या देखती है, अपने खुद का पुत्र है। पुत्र में पीछे से आते हैं कन्हैया जी, मैया क्या शोर मच रहा है, कौन आया है शोर मचाने के लिए। तो उसको देखकर इतनी शर्मिंदा हो जाती है, अरे वो तो मैया के पीछे खड़ा है और मेरे हाथ में मेरा बालक है। ये बड़ी शर्मिंदा होकर लौट जाती हो, बोला ऐसे कैसे हो गया, मैं तो कितने सबके साथ में सबके साक्षी से उसको पकड़ कर यहाँ तक ले आई थी, इतने दूर तक तो मेरे साथ में था वो, अभी अभी तो साथ में था, कहाँ चला गया कहाँ चला गया, ये तू कहाँ से आ गया। उसको अपने बालक को बोल रही है। कुछ देर बाद में जब जाती है उसको लेकर तो उसके घर के रास्ते पर ये खड़े हैं, बोले ताई जी मैंने तो कहा था आपको मुझे छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा आपके लिए, देखो आज के समय पर मैंने तो तुम्हारे बालक के रूप में प्रकट हो गया, मतलब बालक को प्रकट किया तुम्हारे सामने, अगली बार तुम्हारे पति के रूप में प्रकट हो जाऊंगा फिर क्या होगा सोच लो, इसलिए माखन खाने दो, माखन खाते रहूंगा तुम्हारे घर पे और तुम मुझे पकड़ने की शरारत मत करो। एक बार ऐसे ही वो गोपियों ने उनको पकड़ा, कैसे पकड़ा, दोनों उनके हाथ जो है ना वो पूरे पूरे मक्खन के मटके के अंदर है। अरे हमारे मटके तो आजकल इतने इतने से होते हैं, वो इतना मक्खन कहाँ होता है, उस जमाने में इतने बड़े मक्खन के मटके हुआ करते थे, उसका एक सैंपल आज भी है उधर रखा गया है। हाँ उसमें 6 फीट का आदमी उतर सकता है फिर दिखाई नहीं पड़ेगा अंदर गया, तो इतने बड़े मटके हुआ करते थे। उसमें वो मंथन क्या करती थी, उसमें मक्खन बनता था सोचो आप, तो ऐसे बड़े मक्खन में ये दोनों हाथ डुबाकर खा रहा है मक्खन को, उसके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, इतना रेड हैंड प्रूफ है। जब गोपियां पहुंचती हैं, क्यों रे लाला अभी तो मक्खन खाते उनको पकड़ा ना, मैंने मक्खन नहीं खाया, बोलते मैं बिल्कुल मक्खन नहीं खाया, अरे मैं जब यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा इतनी बड़ी चींटियों की लाइन कहाँ जा रही है, तो मैं चींटियों की लाइन को पकड़ते 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 गया तो देखा तुम्हारे मटके के पास जा रही है, फिर मैं आगे गया देखा तुम्हारे मटके पर चढ़ी हुई है, फिर मैं आगे जाके देखा तुम्हारे मटके में घुसी हुई है, वो सारा मक्खन खा रही है। मैंने लगा अरे इतना प्रेम से बनाया हुआ, इतनी मेहनत से बनाया हुआ, इतना कीमती मक्खन चींटियाँ खा जाएगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा, मथुरा जाके क्या बेचोगी, क्या पैसा लाओगे, क्या खाओगे, उसके बाद में बड़ा दुख हुआ मुझे। तो मैंने सोचा कि इन चींटियों से इस मक्खन को मुक्त करना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ा और मैं बढ़ा तो देखा तो मक्खियाँ जो थी, वो चींटियाँ जो थी वो बहुत गहराई में पहुँच गई थी। तो मेरा हाथ भी जानना पड़ा गहराई में मुझे, इसलिए मैंने हाथ डुबाया। फिर वो जब मक्खियों को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा था मैं, तो कुछ मक्खियाँ मेरे हाथ पे चढ़ गई, फिर मेरे हाथ से वो मेरे बाजू में चढ़ गई, बाजू से कंधे पर आ गई, कंधे से गले पर आ गई, गले से मेरे गाल पे आ गई, गाल से मेरे होठों पे आ गई, तो मुझे गुदगुदी होने लगी। तो मैंने मक्खन से हाथ निकाला और यहाँ से ऐसे किया, होठों से अलग किया चींटियों को, और जो मेरे होठों पर लगा तो मेरी जबान मेरी इच्छा के खिलाफ बाहर आई और उसने उसको चाट लिया। मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। अरे सारे उसके जो शरारते हैं, जो उसके जो जस्टिफिकेशन है, उसे गोपियाँ बड़े प्रेम से सुन रही हैं। ऐसे चटपटी लीलाएं भगवान करते हैं वहाँ पर। तो आप सोचिए इसके बीच में राक्षस आ सकता है क्या? इतनी सुंदर लीला हो रही है, राक्षस आएगा तो उसमें बाधा डालेगा, लीला को भंग करेगा, लीला का आनंद को समाप्त करेगा। तो ऐसा ये वृंदावन धाम है, हाँ अनंत लीलाएं हैं भगवान की, जो गोपियों को रिझाने के लिए उनका नौकर बनते हैं, हाँ बरसाने में आते हैं, सखी बनकर आते हैं, बरसाने में सखी बनकर आते हैं, श्यामा सखी बनकर आते हैं, कभी चूड़ियाँ बेचने वाले बनकर आते हैं, कभी ज्योतिष देखने वाला बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी फूल बेचने वाले बनकर आते हैं, कोई बनी धाड़ी न कोई बनी माली न, कभी झाड़ू बांधने वाले बन के आते हैं, कभी फूल बेचने वाले बनकर आते, कभी कंगन बेचने वाले बनकर आते हैं और गोपियों को रिझाते हैं। गर्ग संहिता, गोविंद लीलामृत, हाँ आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू, लीला उसे भरा हुआ है पूरा। तो हमको क्या सीखना है इसके अंदर कि अपने भक्त को रिझाने के लिए ठाकुर जी उनका सेवक बनकर आते हैं, चोर बनकर आते हैं उनको रिझाने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन ब्रजवासियों ने, उन गोपियों ने, उन ग्वाल बालों ने अपना सर्वस्व भगवान के लिए अर्पण कर दिया है, सर्वस्व, कोई भी चीज़ उनके लिए नहीं है, सब कुछ जो भी उनके पास है, जो उनकी उनकी जो उनकी मालिक है उन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें उन्होंने ठाकुर जी को अर्पण कर दी हैं, उनका कुछ भी नहीं है। ऐसे सर्वस्व समर्पण जिन्होंने कर दिया है, ऐसे लोगों के भगवान गुलाम बनते हैं, वही भगवान ऐसे समर्पित भरत अर्जुन के सारथी बनते हैं। बालक बनकर आते हैं, मैया को बालक बनकर माता बनने का आनंद देते हैं, भगवान की माता बनने का आनंद देते हैं वो, नंद बाबा को पिता बनने का आनंद देते हैं। इनके मन में केवल एक ही है, अरे मेरा बालक जंगल में जाएगा तो उधर शेर आएगा, उधर कोई जानवर आएगा, मेरे बालक को मारेगा, कोई राक्षस आएगा, तो कितनी चिंता करते हैं वो। सारी गोपियाँ चिंता कर रही है, मैया चिंता कर रही है, आगे पीछे दौड़ रही है, कब आएगा, सूरज को कोस रही है, अभी तक ढलता क्यों नहीं, तब तक ऊपर इतना क्यों बैठा हुआ है, जल्दी ढल जा ताकि मेरा बालक लौट के आएगा। इतनी चिंता जो करते हैं, वो चिंता जो है वो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत आवश्यक है, वो दिव्य चिंता है उनकी, जो हमारे हजारों मालाएं जप करने से भी अधिक पावरफुल है वो, जो कृष्ण की चिंता करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं और चिंता भी करते हैं। हमारी चिंता जो है, जो हम दुनिया में करते हैं, वो हमको चिता की ओर ले जाती है, हाँ बहुत जल्दी मृत्यु की ओर ले जाती है, लेकिन भगवान का चिंतन जो करता है वो भगवान की प्राप्त करता है और मृत्यु उससे दूर भागता है, काल उससे भयभीत होकर भागता है, क्योंकि साक्षात मूर्तिमान भय, मूर्तिमान मृत्यु जो है वो भगवान से भयभीत है। और वो जो भगवान अब आपके बन जाते हैं जब आप उनको शरण जाते हो, तो काल और मृत्यु आपसे दूर भाग जाता है। इसलिए हम उनका नाम लेते हैं, इसलिए हम उनको पुकारते हैं, इसलिए उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि काल को भगाने का, मृत्यु को भगाने का शक्ति जो है वो केवल कृष्ण भगवान के पास है, और उनकी भी स्वामिनी जो है वो राधा रानी है। कृष्ण को प्राप्त करना, अनंत काल तक तपस्या भी आप करेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति होने की गारंटी नहीं है। जो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, हाँ बहुत सारा व्रत करते हैं, ध्यानी मुनि तपी जितने भी लोग हैं, ऐसे कहते हैं कि भगवान के 20 नाखूनों के द्वारा जो अनंत प्रकाश किरणें निकलती है, उसकी एक प्रकाश किरण का दर्शन भी उनको नहीं होता है इतना तपस्या करने के बाद में। लेकिन वही अलभ्य भगवान, दुर्लभ्य भगवान जो है, वो ब्रज में एक सामान्य बालक बनकर नौकर बनकर डोलते हैं, मक्खन चुरा चुरा के खाते हैं, क्योंकि वो तपस्या से प्रभावित नहीं होते हैं, वो ज्ञान से प्रभावित नहीं होते हैं, वो व्रत से प्रभावित नहीं होते हैं, वो केवल प्रेम से प्रभावित होते हैं। अपने जो दामोदर लीला है कार्तिक महीने की, उससे वो बताते यही है कि जो लोग तपस्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको मैं संदेश दे रहा हूँ कि मुझे प्राप्त करना है तो केवल प्रेम से प्राप्त कर सकते हो। हाँ, स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्त, आख्यान कर रहे, मतलब बखान कर रहे वो कि ये मुझे प्राप्त करने का तरीका है प्रेम का। और वो दामोदर लीला जिस महीने में हुई, वो अभी महीना शुरू हो रहा है, केवल एक हफ्ते के बाद में अगले रविवार को रास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वो दामोदर मास शुरू हो रहा है, जिस दामोदर मास में भगवान को प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो बड़ी आसान करके भगवान भेज देते हैं। जैसे कोई दिवाली के समय पे दुकान पर सेल लगाता है, हाँ मैंने कल देखा है रास्ते पर, बाय 3 get 7 फ्री, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था आज तक, बाय 1 get 2 बाय 1 get 3 ये तक पढ़ा था, बाय 3 get 7 मतलब 10 लेके जाओ फिर घर में जाके दुकान लगाओ और खुद बेचो उसको। तो दिवाली में जैसे दुकानदार अपने माल को बहुत सस्ता बेचता है ताकि लोग आके खरीद कर सके, उसी तरह से साल भर में तपस्या करने वाला, व्रत करने वाला भक्त जो है, उसको भगवान उनकी प्राप्ति बड़ी आसान कर देते हैं। कहते हैं कि एक कल्प जो है वो 43,20,000 ईयर का होता है, इसमें 4 युग होते हैं, उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे लाखों लाखों कल्पों के अंदर मिलकर जितनी पाप राशि उत्पन्न नहीं हो सकती है हमारे द्वारा, हमारे हाथों द्वारा उतने पाप नहीं निर्माण हो सकते हैं, उतने पाप इस महीने में एक दीपक भगवान को अर्पण करने से नष्ट हो जाते हैं। अनंत कल्पों वाले पाप जो है वो एक दीपक को अर्पण करने से नष्ट हो जाते हैं। वो कार्तिक वाले एक दीपक के सामने कितना भी महान पाप जो है टिक नहीं सकता है, खड़ा नहीं रह सकता उसके सामने। जन्म जन्मांतर के पाप केवल नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक कार्तिक के दीपक को, घी वाले दीपक को भगवान दामोदर को, बाल कृष्ण को अर्पण करने से हृदय में प्रेम की ज्योति उत्पन्न हो जाती है। जितना प्रकाश आपने कार्तिक के दीपक को जलाकर निर्माण किया है, उसी प्रकाश के प्रकाश में आपका रास्ता यहाँ से भगवत धाम में प्रकाशित हो जाता है। जब हम यहाँ से भगवान के धाम में चलने लगते हैं इस जीवन के अंत में, एक कार्तिक का दीपक भगवान को अर्पण करने से भगवत धाम जाने का निश्चित हो जाता है। इसलिए कार्तिक में हम सब भक्त लोग जो हैं सुबह और शाम भगवान दामोदर जी का अष्टक गायन करते हैं और दामोदर जी को भोग लगाते हैं और सुबह शाम उनको दीपक अर्पण करते हैं, ये इस गीत का गायन करते हुए। इतना सुंदर महीना है, हम लोग वेट करते हैं उसका, इंतज़ार करते हैं साल भर कब ये महीना आएगा, और जब आता है तो लगता है कभी ख़त्म नहीं हो, कभी समाप्त ना हो, इतना सुंदर महीना है ये। भगवान की जितनी बाल लीलाएं हैं वो सब इस महीने में हुई है, भगवान की गोवर्धन लीला इस महीने में हुई है, भगवान ने गोवर्धन को इस महीने में उठाया है, रास लीला जो है इस महीने के शुरुआत में भगवान ने रचाई है। शरद पूर्णिमा के दिन जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में प्रकट हुई, तब भगवान ने बंसीवट में मुरली बजाकर सब गोपियों को बीच रात में बुला लिया और समर्पण का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लोगों के सामने खड़ा कर दिया। कितनी समर्पित ये गोपियां हैं, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ निछावर करके सब गोपियां रात को आई और भगवान ने ब्रह्मा जी की एक रात तक उनके साथ नित्य का आनंद उनको दिया। केवल पृथ्वी की एक रात के समय में ब्रह्मा जी की एक रात उन्होंने संभाली उनको, गोपियों को उतनी समय तक उन्होंने दिव्य आनंद दिया। सर्वोच्च आनंद जो एक जीव को प्राप्त हो सकता है वो रास के माध्यम से भगवान ने, रास पूर्णिमा के दिन भगवान ने गोपियों को दिया। इसी महीने में राधा कुंड का निर्माण हुआ है, उसके अगले संडे 23 तारीख को राधा कुंड का निर्माण हुआ है, अरिष्टासुर का वध किया उन्होंने। इसी महीने में भगवान जब 5 साल के हुए तो बड़ी गायों का जिम्मेदारी भगवान को दिया गया, उसको कहते हैं गोपाष्टमी। ऐसे अनंत लीलाओं को भगवान ने संपन्न किया इस महीने में, और बाहरी से नाम उनका दामोदर है, दामोदर मास, लेकिन अंतर्गत दृष्टि से ये राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। जो भी व्यक्ति इसमें व्रत करेगा इस महीने में, वो राधा रानी उस पर अनंत कृपा करेगी, वो भक्ति प्रदायिनी है, हाँ भक्ति की जननी है वो। जो कृष्ण के प्रति भक्ति हम करते हैं, करना चाहते हैं, वो जो भी हमारे अंदर अणुमात्र है वो सब राधा रानी की ओर से प्रस्तुत होती है, उनकी ओर से प्राप्त होती है। वो राधा रानी जो भक्ति देने वाली है इस महीने के व्रत से बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और सब जीवों को जो इस व्रत को करते हैं इस महीने में उनको प्रेम भक्ति प्रदान करती है। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मस्ति दामोदरे। हाँ, भक्त जो है मोक्ष की इच्छा से मुक्त हो जाता है जब राधा रानी की इस कृपा को प्राप्त करता है। तो इस महीने में हम सबको कुछ ना कुछ व्रत जरूर करना चाहिए। इतना छोटा व्रत है जैसे एक माला एक्स्ट्रा करेंगे, कल जितनी कर रहे हैं वो 16 तारीख से 14 नवंबर का 30 दिन के अंदर एक माला एक्स्ट्रा करेंगे, एक भगवद गीता का श्लोक और तात्पर्य रोज पढ़ेंगे, एक श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ेंगे उसका अर्थ और तात्पर्य पढ़ेंगे, या धाम में जाएंगे वृंदावन में, या तो कहीं गोदावरी में नासिक में जाएंगे, या तो जगन्नाथपुरी जाएंगे, कहीं धाम में जाकर नदी में स्नान करेंगे, धाम का निवास करेंगे, या रोज सुबह शाम भगवान को दीपक अर्पण करेंगे, रोज दिन में एक बार भगवान का मंदिर में दर्शन करेंगे। इतने सिंपल सारे सिंपल से व्रत आप ले सकते हो, सारे लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई एक ले सकते हो, लेकिन पूरे 30 दिन एक चीज़ को निभाओगे तो भी आपका व्रत के अंदर आपकी क्या कहते गणना हो जाएगी उसकी। और वो व्रत जो करता है उसने जितने पहले देवी के देवताओं के भगवान के जितने भी व्रत किए हैं उन सारों को फल प्राप्त होता है जब कार्तिक का व्रत वो करता है। और अगर वो व्यक्ति सारे व्रत करता है पहले वाले भगवान के लिए और देवताओं के लिए और कार्तिक का व्रत करने को भूल जाता है तो उसके सारे व्रत निष्फल हो जाते हैं। इतना कार्तिक व्रत को महिमा है। जो कार्तिक में व्रत नहीं करता है वो कहते हैं मनुष्य जन्म को खो बैठता है और अगले जन्म में नरक में जन्म लेता है या तो जानवर का जन्म प्राप्त करता है। इतना बड़ा मौका जो मिला है मनुष्य जन्म का वो वही खो बैठता है वो अगर वो कार्तिक का व्रत नहीं करेगा। और दुनिया के कोई व्रत नहीं करेगा, केवल कार्तिक का एक सिंपल सा व्रत करेगा तो भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। सारे देवता उसके शरीर में निवास करेंगे, सारे देवता उसके शरीर में निवास करेंगे जो कार्तिक का व्रती होता है, उसका संग करना चाहते हैं। इतना महान व्यक्ति हो जाता है जब वो कार्तिक का व्रत करता है। वो करना क्या है, 1-7 मिनट की एक माला एक्स्ट्रा करनी है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे जगे रहना कार्तिक में, ये भी एक व्रत है जो सारे पापों को धो डालता है। केवल सूर्योदय के पहले 1 घंटा 32 मिनट के पहले अगर आप जगेंगे तो भी आपका कार्तिक व्रत हो जाता है। देखो इतना महान, इतनी शक्ति है उसके अंदर। तो उसमें अगर हम जप करेंगे भगवान के नाम का, ऐसे भी कहा गया है कि सूर्योदय के 1 घंटा 32 मिनट के पहले उठकर अगर आप ठंडे पानी से कृष्ण का नाम लेते हुए स्नान करेंगे तो भी उसको व्रत माना गया है, वो भी आपको जन्म मृत्यु के बंधन से पार कर सकता है। इतनी शक्ति है कार्तिक महीने के अंदर। तो कार्तिक महीना भगवान कृष्ण का उनके भक्तों के लिए ग्रेट ग्रैंड सेल है, एकदम पूरा ग्रेट सेल। उसका लाभ जो नहीं लेगा उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इसलिए हम आपको सबको विनती करते हैं कि ये कार्तिक मास अभी 7 दिन पर आया हुआ है, इसमें ज़रूर आप घी का एक बाती डुबाकर भगवान को अर्पण करना प्रेम के साथ में। घी भी भगवान का है, वो जो पणती है ना जो दीपक जो वो भी भगवान का दिया हुआ है, लेकिन उस घी को जलाकर ज्योत बनाकर भाव आपका देना भगवान को प्रेम का, और प्रेम के भाव से हृदय से भगवान को दीपक अर्पण करना, इस जन्म के दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। जब तक यहाँ जिएंगे प्रेम आनंद से जिएंगे, वैभव के साथ जिएंगे, ऐश्वर्य यश के साथ जिएंगे, और जीवन के अंत में आनंद से भगवान को मृत्यु की वेदना न होते हुए भगवान को प्राप्त करेंगे, इतनी बड़ी प्राप्ति है। कौन बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धि रखता है वो उसको व्रत को नहीं करेगा, इतनी महान शक्ति इस व्रत के अंदर है। इसलिए आपको सबको बधाई हो कि आज के दिन कार्तिक महीने के 7 दिन पहले आपके यहाँ पर राधा कृष्ण पधारे हैं। कार्तिक महीने में पूरी आपकी सेवा से ही, कार्तिक सेवा से ही आपकी सेवा लेना आरंभ करेंगे वो, है ना। तो फर्स्ट सर्विस फर्स्ट मंथ इज कार्तिक मंथ फॉर एक्सेप्टिंग योर सर्विस। इसलिए सुनहरे मौके को मत गवाना, बड़े हृदय से प्रेम से, हाँ उसका कुछ ज़्यादा पब्लिसिटी ना करते हुए, किसी को ना बताते हुए, मन में रखते हुए उस व्रत को कीजिए आप। कोई किसी को ऐलान करने की जरूरत नहीं है, आपके मन में रखिए, गुप्त रूप से उसको भगवान को हृदय से वो व्रत कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, और ये महीने का पूरा पूरा लाभ लीजिए। कभी और मौका मिलेगा तो आपको कार्तिक महीने के सारे लीलाओं का वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत सुनना, तुलसी को जल देना, संतों के संग में बैठना, वैष्णवों को भोजन कराना, तीर्थ यात्रा करना, नदी में स्नान करना, भगवान का नाम लेना, इसमें से एक या कोई भी वस्तु करने से कार्तिक व्रत हो जाता है, हृदय की शुद्धि होती है, वो सब आनंद की बात है, कोई दुख कष्ट की बातें तो है नहीं। और अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको यहाँ से चलकर चर्च गेट जाना है और 10 करोड़ की पूंजी आपको वहाँ पहुँचते ही मिल जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? कौन जाएगा इतनी धूप में, इतने ट्रैफिक में, कौन जाएगा? नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा 10 करोड़ मिल रहा है तो मैं पैदल चल के भाग के कैसे भी जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करके बहुत सारा लाभ अगर मिल रहा है तो वो थोड़ी सी मेहनत हमको कष्टप्रद नहीं होती है। लाभ जो है वो अभी से लाभ का विचार ही आनंद दे रहा है यहाँ से, वैसे कार्तिक का व्रत है। थोड़ी सी मेहनत, अनंत लाभ इस कार्तिक महीने में प्राप्त होता है। तो मैं राधा रानी जो इस व्रत की मालकिन है, स्वामिनी है, इस व्रत को फल देने वाली है, उस राधा रानी के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपना छोटा मोटा व्रत कर लें और उस व्रत को हृदय से 30 दिन पालन करने में सफल रहें और राधा रानी की अनन्य कृपा आप सबको प्राप्त हो जाए, यही मेरी उनके चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्णा।